सबको नमस्ते। तो 16 संस्कारों की श्रृंखला में विवाह संस्कार पर चर्चा चल रही थी। विवाह संस्कार का महत्व, गृहस्थ आश्रम का इम्पोर्टेंस, और पिछले बार ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे विवाह संस्कार में जो विधियां होती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। और उन्होंने कुछ विशेष रिचुअल्स की चर्चा की थी लास्ट टाइम, जयमाला, पाणी ग्रहण, मधुपर्क, कन्यादान, शिलारोहण और अश्मारोहण, प्रदक्षिणा या फेरा, स्त्री का यशोगान। जब आप विवाह संस्कार के विधियों को सुन रहे होते हैं, तो आप अपने लाइफ में उस विधि से, अगर जब शादी आपकी हुई तो उस समय अगर आप ठीक ठाक हालत में थे, सुन देख रहे थे, तो हो सकता है आपको वो मेमोरी आए, याद आए, आप रिकॉल कर सकें। उन्हीं विधियों में से कुछ और दो चार विधियों की बात करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। विवाह संस्कार का जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण मुख्य विधि, उसे कहते हैं सप्तपदी। सप्तपदी, सप्तमला सात, पदी मतलब पैर, पदमला स्टेप, स्टेप को भी बोलते हैं, सेवन स्टेप्स जो चलते हैं ना, स्टेप्स रखते हैं। बाय द वे, सप्तपदी संस्कृत में पद का मतलब बोलना भी होता है, मतलब सेवन अटर्स, सात वाते। सात बातें या सात स्टेप्स का क्या मतलब है? वेदी पर विवाह में दोनों ग्रूम एंड ब्राइड, मतलब वर और वधु, एक साथ सात स्टेप्स लेते हैं, हर मंत्र के साथ लेते हैं। इस रिचुअल्स की क्या मीनिंग क्या है? मीनिंग है, नॉर्मली जब दो स्ट्रेंजर्स, अनजान लोग रास्ते में मिलते हैं, अगर इवन सात कदम भी साथ चलते हैं या सात बातें शेयर करते हैं, वो फ्रेंडशिप का, मैत्री का बिगिनिंग आरंभ हो जाता है। आप कहेंगे साथ ही क्यों, कोई जरूरी है कि साथ? तीन भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, हो सकता है, एक साथ को एवरेज लिया। जब आप पहली बार एक स्ट्रेंजर के साथ सेवन स्टेप्स लेते हैं या सात बातें करते हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, वॉक कर रहे हैं, स्टोर में हैं, किसी से आपने बातचीत की, दो चार पांच लाइन बातचीत की या साथ साथ चले, तो दोस्ती की शुरुआत होती है। इसी तरह लड़का और लड़की, वर और वधु, शादी में सात स्टेप्स लेते हैं फॉर द बिगिनिंग ऑफ their life, friendship of their life, अपने जीवन की मैत्री का ये शुरुआत है। मैत्री किसके साथ? ये मैत्री शब्द याद रखिए, मित्र भाव, फ्रेंडशिप, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है हस्बैंड एंड वाइफ में, पति और पत्नी में, जो मिसिंग फैक्टर है, ये तो यही है, फ्रेंडशिप। और हिंदू विवाह का जो कोर वैल्यू है वो है सप्तपदी। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है सप्तपदी का, अगर जानना है तो भारत में जो सिविल लॉ है, उस सिविल लॉ में सिर्फ हिंदू वेडिंग सेरेमनी में, हिंदू विवाह में सिर्फ सप्तपदी को ही लीगल माना गया है। इसका मतलब है, अगर आपने पूरी शादी कुछ भी नहीं की, सिर्फ सात स्टेप ले लिया, सात फेरा नहीं, सात स्टेप साथ साथ ले लिया, सप्तपदी आपकी हो गई, तो आप लीगली मैरिड हैं। अगर सप्तपदी नहीं ली, बाकी तीन दिन तक सारे आपने रिचुअल्स, सेरेमनी सब किया, तो भी लीगली आप मैरिड नहीं है। इतना इंपॉर्टेंस है कोर्ट्स में भी, लॉ में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी। और इस सप्तपदी का भाव क्या है? कि पति और पत्नी का फ्रेंडशिप का बिगिनिंग है, आरंभ है। और फ्रेंडशिप का जो रूल है वो हस्बैंड एंड वाइफ की रूल से अलग है ना। फ्रेंडशिप में एक दूसरे को हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम एक दूसरे से की सुख दुख में तैयार रहते हैं साथ देने के लिए, और हम एक दूसरे के साथ मजाक भी करते हैं, हम एक दूसरे के नाराज भी होते हैं तो एक दूसरे को मना लेते हैं। और फ्रेंडशिप का, मैत्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो अभी तक मैंने नहीं बताई, वो कि फ्रेंडशिप में दोनों बराबर होते हैं। आप रियल लाइफ में बराबर है या नहीं है ये अलग बात है, पर अगर आप किसी को फ्रेंड मानते हो तो आप बराबरी का भाव देते हो, नहीं तो फिर किस बात की फ्रेंडशिप। और इसीलिए सप्तपदी का जो नियम होता है कि पति और पत्नी बनने वाले दोनों वर और वधु एक ही साथ राइट एंड लेफ्ट स्टेप रहते हैं, एक ही साथ लेने का नियम है। और सप्तपदी से पहले जो वर है उसके द्वारा एक मंत्र बुलाया जाता है, उसका अर्थ होता है कि बायां पैर या दाएं पैर दूसरे पैर को ट्रांसपास ना करे, ट्रांसग्रेस ना करे, अतिक्रमण ना करे। मतलब घर के दो दोस्त घर की पहिया बन के चलाने वाले हैं, उनमें कोई भी पहिया दूसरे पहिया को सरपास करने को, पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। दोनों के अपने अपने रोल्स अलग अलग हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। कोई बाहर संभालता है तो कोई अंदर संभालता है। प्रोफेशन हो सकता है अलग अलग हो, काम हो अलग अलग हो, घर के काम में अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो, पर दोनों के वो अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने से ही परिवार चलता है। और दोनों में वो बराबरी का भाव है, मैत्री भाव, सप्तपदी। हर वो इंडियन को, खास को ये दिमाग में रटा देना चाहिए था, उस लड़की को भी और लड़के को भी। विवाह सिर्फ पति पत्नी नहीं, तुम्हारा धर्म शास्त्र कहते हैं तुम दोनों दोस्त की तरह रहना सीखो, ये लड़कियों को भी रट लेना चाहिए था, लड़कों को भी रट लेना चाहिए था कि तुम दोनों मित्र भाव के लिए सप्तपदी का विधि विधान किए हो। और सप्तपदी के बाद एक बड़ा और एक सुंदर रिचुअल होता है, हृदय स्पर्श। हृदय समझते हैं, दिल स्पर्श मतलब टच करना, दिल को छूना। अभी हृदयालंबन भी बोलते हैं, दिल को लगाना। अब ये दिल लगाने का क्या मतलब है? रिचुअल में दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं, एक बड़ा सुंदर मंत्र बोलते हैं। मंत्र तो ऋग्वेद का है पर विचार कितना प्यारा है। कहते मम ब्रते ते हृदय दधामि, मम चित्त मनो चित्तम ते अस्तु, मम वाच मेक मन जुषस्व प्रजापतिष्ठ्वा नियुनक्तु मह्यम्। दोनों बोलते हैं एक दूसरे को, वर और वधु, क्या मेरे हृदय में को तुम समझो, तुम्हारे दिल को मैं समझूं, मेरे दिल में क्या चल रहा है वो तुम समझने की कोशिश करना, मैं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है समझने की कोशिश करूंगा या करूंगी, मेरे थॉट्स को तुम फॉलो करना, मैं तुम्हारे थॉट्स को फॉलो करूंगा। और थर्ड लाइन है, मेरी वाणी को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रजापति ने, परमात्मा ने तुम्हें मेरे साथ जोड़ा है। तीन चीजें हैं, मोस्ट ऑफ कपल्स की लाइफ में यही तीन चीजें मिस होता है। सबके नहीं, बड़े अच्छे कपल्स होते हैं, देख करके प्रसन्नता होती है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। ये शब्द है एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, यही इस मंत्र का भाव है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? एक दूसरे को, दिल को समझना, उसके दिल में क्या चल रहा है, क्यों वो नाराज हो रहा है या हो रही है, क्यों वो ठीक नहीं फील कर रहा है या फील कर रही है, इस चीज को समझना, बिना बोले समझने की कोशिश करना, मेरी फीलिंग को समझ लेना, मैं भी कोशिश करूंगा या करूंगी तुम्हारे फीलिंग को समझना। वैसे ये कोई नया एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम एक दूसरे से, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा जो पति या पत्नी हो वो मेरे फीलिंग को समझे। प्रॉब्लम है कि हम वन साइडेड, ज्यादातर लोग हम वन साइडेड ही सोचते हैं, और वो क्या है, मेरी फीलिंग को वो समझे और उसकी फीलिंग का क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है, तुम्हारा प्यार का क्या? विवाह म्यूचुअल है, एक आदमी शादी नहीं करता, एक लड़की शादी नहीं करती, एक लड़का शादी नहीं करता, दोनों करते हैं, दोनों की इच्छाएं हैं, दोनों की आवश्यकताएं, नीड्स हैं, दोनों के एस्पिरेशंस हैं, दोनों के इमोशंस हैं। इस सारे सेंटेंस में अंडरलाइनिंग क्या है, दोनों के, ना पति का ना पत्नी का, ना पुरुष का ना स्त्री का, दोनों के हैं। प्रॉब्लम कहां होता है, जब एक समझता है या समझती है, दूसरा नहीं समझता नहीं समझती। जो बहुत बिगड़े हुए रिलेशनशिप है वहां तो दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझते, वो तो एक दूसरी बात है, वहां तो भगवान बच्चा है। जहां एक ही साइड में होता है वहां कंप्रोमाइज होता है। फिर हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं शादी तो कंप्रोमाइज है। जो काउंसिलर है वो भी बताता है कंप्रोमाइज करना सीखो। क्यों कंप्रोमाइज करना सीखें? कंप्रोमाइज का मतलब क्या होता है? एक जना दूसरे की फीलिंग को समझे, दूसरे को सुने, दूसरे को जाने, दूसरे का कोई मतलब नहीं। कंप्रोमाइज तब होता है जब एक सरेंडर करता है दूसरा नहीं। जब दोनों सरेंडर करते हैं कोई किसी के लिए कंप्रोमाइज नहीं करता, वो तो प्यार है, वो तो एक दूसरे के अच्छा चाहने का भाव है। कंप्रोमाइज तब होता है जब एक करता है या करती है, दूसरा एक्सपेक्ट करता रहता है, करती रहती है, और एक करता रहता है या करती रहती है। जब दोनों तरफ से चले कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, इवन आप कंप्रोमाइज करते भी हो वो कंप्रोमाइज नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से है। उसने तुम्हारे लिए कुछ किया और तुमने उसके लिए कुछ किया, एक्सचेंज हो रहा है, और जहां एक्सचेंज हो रहा है कोई किसी पर एहसान नहीं करता है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, दोनों की जरूरतें। तो मंत्र कहता है कि तुम मेरे भावना को समझो, मैं तुम्हारी भावना को समझो, दिल को समझो। और एक मजेदार बात क्या है, जो बहुत सारे कपल्स में मिसिंग होती है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। आप थोड़ा, मैं लिबरल होकर नंबर बताऊं तो 60% कपल्स की ये कंप्लेन है। वैसे तो हो सकता है 90% हो, पर मैं लेकर चलता हूं 40% समझदार है वो। आप अपनी अपनी नंबर निकालना, इंक्लूडिंग मी। तो ज्यादातर पति या पत्नियों का कंप्लेन है कि ये मेरी बात को ठीक से सुनते नहीं है, ठीक से समझते नहीं है, मैं बोलता जाता हूं या बोलती जाती हूं वो सुनते नहीं, हाँ हाँ करते चले जाते। हमारा जो ज्यादातर पति और पत्नी में जो झगड़े होते हैं, जो बहस होता है, उसको कोई रिकॉर्ड करके उनको दोबारा सुनाए, मोस्ट ऑफ झगड़े में आपको बड़े इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगा, सब झगड़े में नहीं, कि दोनों एक ही बात कर रहे होते हैं, फिर झगड़ क्यों रहे होते हैं? क्योंकि कोई किसी को सुन नहीं रहा होता है। अगर सुन लेते तो समझ में आ जाता, अच्छा मैं जो बोल रहा आप तो वही बोल रहे, फिर झगड़ा किस बात की? सुनना नहीं है, सिर्फ बोलना है, बोलना है, बोलना है। ये जो ना सुनने की बीमारी पति पत्नी में प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करता है। और ना सुनने के अलग अलग तरीके हैं। बहुत सारे लोग दावा करते नहीं मैं पूरा सुनता हूं या सुनती हूं, पर रियली वो नहीं सुनते हैं। उनके कान तो खुले होते हैं, आंखें खुले होते हैं, अंदर का जो कान के अंदर जो वर्ड्स जाते हैं वो यहां पहुंचते पहुंचते लॉक्ड होते हैं, फिर वर्ड सुनाई देता है, अंदर कुछ जाता नहीं है, मतलब कोई सीरियसली लेता नहीं है। विवाह के वेदी पर वेद का वो मंत्र बोला जाता है, इसीलिए ये ह्यूमन नेचर है। ऐसा नहीं कि अगर हमारे में से किसी में ये प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत है, तो ये कोई बहुत अनोखी बात है। अगर अनोखी बात होता तो वेद मंत्र क्यों लिखता? वेद में ये मंत्र ही क्यों आता और शादी के साथ इस मंत्र को जोड़ा ही क्यों जाता? इसका मतलब है कि कमी है, तभी मंत्र के द्वारा हम उसको रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं। ऋषि, मेरी भावना को समझो, मैं भी तुम्हारी दिल को समझूं, मेरी वाणी को तुम सुनो, तुम भी मेरी वाणी को सुनो। एक बड़ा प्यारा रिचुअल होता है विवाह के एंड एंड में, इसको कहते हैं ध्रुव दर्शन और अरुंधति दर्शन। ध्रुव दर्शन, हम ध्रुव तारा समझते हैं, ये जो पोल स्टार होता है ना, नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, पोल स्टार भी, ये नॉर्थ साइड में आकाश में रात को उत्तर दिशा में ऊपर देखेंगे तो एक तारा जो स्टार है, बड़ा सा तारा, वो हमेशा आपको एक जगह दिखेगा। एक तो वो क्वेश्चन मार्क की तरह भी दिखता है, उसको सप्तर्षि बोलते हैं। वो सप्तर्षि में जो बड़ा बड़ा तारा है, जो बड़ी तारा है, जो बिग स्टार है, वो हमेशा उस जगह दिखता है। इसको अंग्रेजी में पोल स्टार या नॉर्थ स्टार बोलते हैं। वो पोल स्टार जिस रीजन से बोलते हैं हम उसको भारत में, उसी कारण से ध्रुव तारा बोलते हैं। ध्रुव मतलब स्थिर, जो हिलता डोलता नहीं है, जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। जितने भी तारे होते हैं वो आपको अलग अलग समय पर अलग अलग जगह दिखेंगे, पर ध्रुव तारा आपको हमेशा एक ही जगह दिखता है, मानो बिल्कुल पहाड़ की तरह वहां स्थिर है। और उसके बगल में और एक तारा है, वो थोड़ा छोटा दिखता है, उसका नाम हमारे यहां दिया अरुंधति तारा। अब ध्रुव अरुंधति कौन है? एक ध्रुव ऋषि है, उनकी पत्नी अरुंधति है। तो रिचुअल क्या है? रिचुअल में वो जो वर है, सप्तपदी के बाद एक दो रिचुअल के बाद ऑलमोस्ट एंड की ओर, वो अपने उस न्यूली मैरिड वाइफ, अभी रिचुअल पूरा नहीं हुआ है पर सप्तपदी के बाद वो ऑफिशियली मैरिड हो चुके हैं, उसको वेदी के कोने में लेकर के उत्तर दिशा में बोलता है, ध्रुवम पश्य, देख ये ध्रुव को देखो। तो मंत्र है, वो डायलॉग टाइप का मंत्र है। तो वधु बोलती है, हां मैं देख रही हूं। तो फिर वर पूछता है, क्या देख रहे हो? कि मैं ध्रुव तारा को देख रही हूं। फिर एक मंत्र बोलता है, उस मंत्र का मतलब है, जैसे ये ध्रुव स्थिर है, अपने जगह पर स्थिर है, हिलता नहीं है, तुम भी मेरे लाइफ में वैसे ही स्थिर बनो। स्थिर बनो मतलब छोड़ के भाग ना जाना, मेरे साथ हमेशा रहना, सुख में भी रहना, दुख में भी रहना, अच्छे में भी रहना, बुरे में भी रहना, साथ रहना। पत्नी बोलती है, अभी अभी नई नई 5 मिनट पहले सप्तपदी हुई है, पत्नी बोलती है हाँ जरूर मैं तुम्हारे साथ ध्रुव की तरह मजबूती से खड़ी रहूंगी। इतने सारे प्रॉमिस करने के बाद कैसा कोई जो हिंदू विवाह करे और समझ बूझ के करे मंत्रों को रिचुअल्स को, कैसे तलाक लेगा? थोड़ा वैसे ही परेशानी होगी, हम समझा नहीं रहे ना, तभी प्रॉब्लम ज्यादा होता है। इसीलिए हर मंत्र को रिचुअल्स को बच्चों को समझाना चाहिए, उनको फील कराने की जरूरत है। जो बात बात पर सेपरेशन कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो नहीं है, छोड़ के भाग जाना, कहां मिलेगी कंपैटिबिलिटी? दुनिया में कहीं नहीं मिलता। फिर अगले बार वो लड़का पूछता है अरुंधतिम पश्य, ये अरुंधति को देखो, अरुंधति जो दूसरी तारा है छोटी सी, वो लड़की इस रिचुअल में बोलती है हां मैं अरुंधति को देख रही हूं। लड़का बोलता है जैसे अरुंधति ध्रुव तारा के साथ हमेशा रहती है, तुम भी मेरे साथ मेरे घर में हमेशा रहो। लड़की बोलती है जरूर रहूंगी, अरुंधति के तरह तुम्हारे साथ साया के तरह रहूंगी। ऐसा मजेदार बात है, ये लड़का बोलता है, लड़की को टेंशन है, लड़की का ना चली जाए, ध्रुव की तरह टिके रहो मेरे साथ, अरुंधति की तरह टिके रहो। इसका क्या अर्थ निकालना है वो आप निकालिए। ये लड़की का वो ऐसा नहीं है कि दोनों बोलते हैं, लड़का ही बोलता है कि ध्रुव की तरह खड़ी रहो, अरुंधति की तरह मजबूत से खड़े रहो। लड़की का इसमें सिर्फ जवाब देती है हां हां। अब ये इंटरेस्टिंग है, आपको इसका अर्थ निकालना है। कितना प्यारा रिचुअल देखिए, जीवन में ध्रुव और अरुंधति की तरह वर और वधु एक दूसरे के साथ रहें जीवन भर, और जब आशीर्वाद देते हैं, जो एक आशीर्वाद के रिचुअल के रूप में होता है, तो उसमें एक शब्द आता है चक्रवाके व दंपति, वो भी अथर्ववेद का मंत्र है, तुम दोनों उस चकुआ चकुई पक्षी के तरह साथ रहना। मां बाप आशीर्वाद देते हैं मंत्र के द्वारा, अपने मन से नहीं, मंत्र के द्वारा देते हैं। पता नहीं मन से क्या आशीर्वाद देते हैं, वो तो अलग बात है, अच्छा ही देते होंगे। फिर अच्छे देते हैं, फिर बाद में बहुओं से क्यों लड़ाई होती है भी समझ में नहीं आता है ना। तो अलग बात है, तो मंत्र के द्वारा आशीर्वाद देते कि दोनों चकुआ चकुई की तरह, बहुत बार चर्चा किया है चकुआ चकुई, ये एक ऐसे यूनिक बर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहते, हमेशा एक दूसरे साथ रहते हैं। तुम दोनों, ये वेद का मंत्र कहता है कि तुम दोनों चकुआ चकुई की तरह पति पत्नी हमेशा साथ रहना। ये विवाह के कुछ मुख्य मुख्य चीजें मैंने आपके सामने रखा, थोड़ा ग्लिम्स देने के लिए कि हमारे जो वैदिक विवाह संस्कार है वो सिर्फ रिचुअल्स नहीं है। वहां सिर्फ पंडित जी एक मूर्ख अधपढ़ पंडित आकर कुछ बोल जाता है नहीं, उस हर रिचुअल के पीछे कुछ इंटेंशन है, कुछ समझाने के लिए एक भाव है, और वो जो मंत्र बोले जाते हैं उस मंत्र का भी कितना पावरफुल मीनिंग है। अगर दोनों वर और वधु ठीक ठीक समझ करे शादी में विवाह में, उस रिचुअल को समझें, उसकी जो पीछे जो सेंस है उसको समझें और उन मंत्रों के भाव को समझें, ऐसे भी आधा आपके प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। पति पत्नी की प्रॉब्लम्स का मूल कारण मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशन है, हम शादी क्यों किए हैं इसको भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत लोगों को लगता है मैंने शादी करके किसी पर एहसान किया है, वो लेडी हो या मेल हो या फीमेल हो। जब आप शादी के बाद आपको लगता है आपने एहसान किया है, तो आप कभी अच्छे रिलेशनशिप निभा ही नहीं सकते हो। अब तो मालिक बनने की बैठने के चक्कर में हो एहसान करके। हाँ, अगर ये मान लो कि मेरे ऊपर एहसान हुआ है तो चलो ठीक है, थोड़ा तो आप कहीं सरेंडर करोगे। शादी के बाद अब आप कपल बने, साथ रहेंगे, सारे वेद मंत्रों में तो वही है, साथ रहेंगे। और साथ रहने के लिए प्यार हो ना हो, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, एक दूसरे की फीलिंग को समझना जरूरी है, जो हृदयालंबन में हमने जाना। दो चार बातें, अब ये विवाह के कुछ विधियों का डिस्कशन किया, अब दो चार बातें हम डिस्कशन करेंगे शादी के बाद पति पत्नी के रिलेशनशिप में के बारे में, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जिनको ध्यान रखने की जरूरत है। मैं शुरू करता हूं कुछ मनुस्मृति के एक आधा श्लोक से, फिर हम आगे पढ़ेंगे। मनुस्मृति का ये बड़ा खूबसूरत श्लोक कहता है, संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्त्रा भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यं, कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। ध्यान दीजिए, पति और पत्नी दोनों से सुनना पड़ेगा। जिस फैमिली में पत्नी से पति खुश हो और पति से पत्नी खुश हो, उस फैमिली में, उस परिवार में हमेशा कल्याण होता है। देखिए, ध्रुव शब्द आया, और वो जो कल्याण है, वो जो अच्छाई है, खुशी है, वो सस्टेनिंग होता है, लास्टिंग है, ध्रुव सत्य होता है। खैर, ये तो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। क्या? पति पत्नी से खुश हो, पत्नी पति से खुश हो, वन साइडेड नहीं। ये वन साइडेड मैं इसीलिए बोलता हूं, ज्यादातर फैमिली में, खास करके इंडियन फैमिली में, हम वन साइडेड सोचते हैं। मेरा ख्याल वो रखे, मेरा ध्यान वो रखे, मेरे एक्सपेक्टेशन का पूरा नहीं हुआ, मेरी शादी खराब हो गई, और दूसरे का क्या? तुमने सारी ड्यूटीज निभाई, तुमने उसका ख्याल रखा, कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो। जब तक मैं ये ना सोचूं मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया, तब तक मुझे ये सोचने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे लिए क्या किया। गड़बड़ी अगर तुम्हारे तरफ से है तो क्यों एक्सपेक्ट करते हो सामने वाला कुछ ज्यादा करे? क्योंकि मैं लड़की हूं या लड़का हूं, मैं पत्नी हूं या पति हूं, मेरा कोई प्रिविलेज है? ये प्रिविलेज का जहां से इंटेंशन आया, वहां उस घर में प्रॉब्लम शुरू होगा। दोनों एक दूसरे को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा। पत्नी की ड्यूटी पति को खुश रखें, पति की ड्यूटी पत्नी को खुश रखें। जहां भी एक पहिया पर गाड़ी चलेगी, दूसरा पहिया पंक्चर हुआ, वो गाड़ी में एक्सीडेंट ही होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा तो वो ऐसे गाड़ी चलेगी, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। और एक बहुत जरूरी बात जो फैमिली के लिए जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि आप अपने मन से कुछ बातें बोल देते हैं, अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज, ऐसा कुछ नहीं। ये भी मनुस्मृति का ही श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियः, शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यति आशु तत्कुलम्, न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तदि सर्वदा। जिस परिवार में स्त्रियों का रेस्पेक्ट नहीं होता है, स्त्री का मतलब सिर्फ वाइफ नहीं, वो किसी भी रूप में हो, मां बहन बेटी पत्नी कोई भी किसी भी रिलेशनशिप से उस फैमिली में रहती हो, अगर उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलता, ऑनर नहीं मिलता, वहां कोई देवता टिकते नहीं है, मतलब आपकी सारे पूजा भक्ति उपासना धर्म पुण्य जो कुछ भी लाइफ में तुम अच्छा काम करते हो, कोई भी तुम लाइफ में अच्छा काम करते हो, सब बेकार होते हैं, निष्फल होते हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये स्मृति शास्त्रों की बात है। तो उनको तो आप रेस्पेक्ट जरूर करिए। कोई हमारे जैसा आदमी बोल दे तो आप टाल देंगे, क्या बोलता रहता है, ठीक है। पर शास्त्र बोलते हैं, ऋषि एक्सपीरियंस्ड होते हैं, रियलाइज्ड होते हैं, दुनिया को वो इम्पार्शियल होकर देखते हैं। मनुष्यों में ये एक नेचर है, मनुष्यों में क्यों, पशु पक्षी सब में है, जो मेल है जो पुरुष है, क्योंकि वो शारीरिक बल से ज्यादा पावरफुल होता है, बाय डिफॉल्ट नेचर नेचुरली होता है। वो हमेशा कोशिश करता है जो फीमेल है, ध्यान रखिए ये सिर्फ ह्यूमन बींग में नहीं, इवन एनिमल से पशुओं में भी दिखेगा, उसको नीचा दबाने की। पर मनुष्य तो बुद्धिमान है ना, जानवर तो है नहीं, उसमें शारीरिक बल यहां भी पुरुष में ज्यादा होता होगा बहुत सारे जगह, पर बुद्धि है विवेक है। वो अगर ये नहीं समझेगा सिर्फ शारीरिक बल थोड़ा ज्यादा हो जाने से तुम किसी को सेकेंडरी समझो, नीचा समझो, उसके अधिकार को कम करके देखो, ये तो जानवर जैसा हो गया ना फिर। इसीलिए ऋषियों को ये श्लोक या मंत्र अलग से बोलना पड़ता है कि तुम महिला को रेस्पेक्ट करना सीखो, और जिस परिवार में महिला का रेस्पेक्ट नहीं होता है वो परिवार ऊपर से कितना भी फला फुला दिखे, अंदर से टूटा हुआ दुखी फ्रस्ट्रेटेड फैमिली होगा, वहां कभी कोई सुख चैन से रह नहीं सकता। ये जरूरी है, इसीलिए ऋषि कहता है कि महिलाओं को रेस्पेक्ट करो। ये स्पेशियली एक्सक्लूसिवली क्यों कहा, क्यों नहीं कहा पुरुषों को रेस्पेक्ट करो, पुरुष ही तो है जो महिला को रेस्पेक्ट नहीं करता है, जो नहीं करता उसी को तो बताया जाता है, चोर को ही तो बताया जाता है चोरी मत करो, अच्छा आदमी को क्यों बताया जाएगा कि चोरी मत करो जो चोरी करता ही नहीं। ये पुरुष समाज ही है जिसको सिखाने की जरूरत होती है कि स्त्रियों को रेस्पेक्ट करो। और आयरनी देखिए, ये जो इंडियन सोसाइटी है, कंपैरेटिवली हमारे यहां स्त्रियों को सबसे ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। ऐसा नहीं कि पत्नी को, मां को भी, मां और बाप के कंपैरिजन पिता को ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, मां को नकली प्रेम ज्यादा दिखाते हैं, मां तुम बहुत अच्छी हो बहुत प्यार करती है, क्योंकि मां 24 घंटे खाना बनाती है पालती है। कभी रेस्पेक्ट दिखाने के लिए बोला मां रहने दो खाना मैं बना दूंगा, मां मैं 15 दिन के बाद आया तुम्हारी हाथ की खाना मिस करता हूं, यही है प्यार। इसका मतलब क्या है, खाना बनाओ 80 साल का तो भी बनाओ, ये नकली प्यार है। प्यार होता तो बोलती मां तुम बैठ मैं बनाता हूं तो मेरा लिए तुम्हारे लिए। ह्यूमन बीइंग का रिस्पेक्ट कम हो जाता है जब लेडी आ जाती है। ये जो नॉर्मल ह्यूमन सेंसेस होते मेल्स के पुरुषों का, वो स्त्रियों के सामने कम पड़ जाते, समझ में नहीं आता है, उनको पता ही नहीं चलता मेरे बिहेवियर से मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूं कि डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूं, प्यार कर रहा हूं कि उल्टा कर रहा हूं, समझ में नहीं आता है। मां के साथ तो हम इमोशनल खेल खेलते हैं, किसी को पसंद आए ना आए दैट्स योर प्रॉब्लम। पर ज्यादातर लोग बोलेंगे मैं मां से ज्यादा प्यार करता हूं पापा के कंपैरिजन, पर काम भी बूढ़ी मां से ही ज्यादा करवाते हैं। मां काम करना बंद कर दे फिर अलग बात है, फिर पता चलेगा प्यार कितना है, तब तो फिर असली प्यार है। ये कहना इसलिए पड़ रहा है स्त्रियों के साथ जो व्यवहार होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन सोसाइटी में होता है, दुनिया में सब जगह होता है। इंडिया से तो और बुरा हाल बाकी जगह पर है, क्योंकि हम तो अपने देश की अपने कल्चर की बात करेंगे ना। इसीलिए मंत्र कहता है, अगला मनुस्मृति का श्लोक कहता है, शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यति आशु तत्कुलम। जिस परिवार में स्त्रियां घुट घुट के मर रही हो, बोल नहीं पा रही हो, दुखी हो, परेशान हो, अंदर से दुख के साथ कंप्रोमाइज करके जीना पड़ रहा हो, उस परिवार में कुछ नहीं भला होने वाला। तुम हजारों पैसा कमा लो, बिल्डिंग बना दो, पर अगर तुम्हारे घर में कोई भी महिला, वो तुम्हारी पत्नी हो, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, और अंदर से घुट घुट रही है, तो तुम्हारे जीवन में कभी सुख मिल ही नहीं सकता। जो भी सुख मिलेगा वो टेम्पररी होगा। अब परेशान नहीं होना सोच के आचार्य जी ऐसा क्यों बोल रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो जस्ट कोट कर रहा हूं, कोट मनुस्मृति का श्लोक है। और ऐसा नहीं, मनुस्मृति का तो एक कोट किया, हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। इसीलिए वो मनुस्मृति आगे बताता है, तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भूतिकामेर नरेर नित्यं सत्कारेषु उत्सवेषु च। मनुस्मृति का ये श्लोक कहता है, इसीलिए हमेशा अपनी घर की महिलाओं को, इंक्लूडिंग तुम्हारी पत्नी को, हमेशा उनको आदर करना। खाली ये इमोशनल आदर नहीं कि आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू, माँ आई लव यू, वाइफ आई लव यू, बेटी आई लव यू, नहीं, वो फिजिकली दिखना चाहिए। और उसके लिए मनुस्मृति कुछ बहुत सिंपल टिडबिट्स देता है। हमें लगता है ना कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो बहुत ज्यादा समझते हैं रिलेशनशिप को कैसे संभालना है, हम लोग नहीं। नहीं, हमारे पूर्वज बड़े अच्छे समझते थे, हम ही नहीं समझ पाए। तो क्या कहता है हमारे पूर्वज जो कहते हैं कि हमेशा पत्नी को भूषण, अलंकार, ऑर्नामेंट्स, अच्छा दना, अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे भोजन के द्वारा खुश करते रहना। महिलाओं के अपना इमोशंस हैं, उनका ध्यान रखना। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण से उनको खुश करते रहना। अगर भूतिकामी नरी, अगर तुम चाहते हो सुख से रहो, शांति से रहो, समृद्धि बने, तो तुम्हारे घर के महिलाओं को, तुम्हारी पत्नी को भूषण, आच्छादन और आसन, खान पान, अच्छे कपड़े और आभूषणों से खुश करते रहना, देते रहना। और क्या मजेदार बात बताया, सत्कारेषु उत्सवेषु च। और स्पेशियली जब कोई फेस्टिवल्स हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो, उस समय तो जरूर देना। ये कोई आजकल ये सब वो हिंदू पुंगापंथी लीडर्स बोलेंगे, देखो ये वैलेंटाइन डे में गिफ्ट दिया, ये तो वेस्टर्न कल्चर है। बकवास है, तुम्हारे पूर्वज भी, ये तो ह्यूमन नेचर है। वेस्टर्न क्या, ईस्टर्न क्या, तुम हजार साल से मूर्ख बने रहे तो थोड़े ही एक जो जो ह्यूमन नेचर है वो बदल जाएगा। किसी भी अच्छे ओकेजन पर अपनी पत्नी को, जो भी घर की महिलाएं हैं, उनको अच्छे कप, उनके मनपसंद कपड़े, आभूषण, अच्छा खाना रेस्टोरेंट लेके खिलाओ, खुश कराओ। ये उनके कुछ स्पेशल एस्पिरेशंस होते हैं जो पुरुषों में इतना ज्यादा ये में नहीं होते। आप किसी पुरुष की बर्थडे भूल जाओ, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, बस स्त्री का भूल जाओ तो भूचाल आ जाता है। ठीक है, वो उनकी उसी तरह की इमोशंस हैं, ये समझने की जरूरत है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार क्लारीफाई कर रहा हूं, मुझे दोष नहीं देना ये तो आपके शास्त्र कहते हैं, आपके शास्त्र, मैं तो बस कोट कर रहा हूं। ऋग्वेद का एक सुंदर मंत्र है, कहता है जाये दस्तम, ये छोटा सा वाक्य सूत्र जैसा पावरफुल मीनिंग है। क्या? जाया पत्नी, वाइफ, इत डेफिनेटली अस्तम, अस्तम मीन्स होम, हाउस, पत्नी ही घर होता है, पति नहीं। पुरुष कभी घर नहीं बनाता, बिल्डिंग्स बनाता है। ऐसा नहीं कि ये मनुष्यों में है, आप जंगलों में जाओ, पशुओं को देखो, बच्चा पैदा हो जाता है, पुरुष भाग जाता है, पशु पुरुष, वहां भी वो बंदर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, नेला हो, पक्षी हो, मां ही बच्चों को पालती है, केयर करती है। बहुत सारे पशुओं में पुरुष ध्यान रखते हैं, खाना ला करके देते हैं, करते हैं, पर मां का रोल उसमें ज्यादा होता है। मां है कि घर है? पुरुष तो बिल्डिंग बना देता है, पर उस बिल्डिंग को एक खूबसूरत इमोशनल होम बनाता है मां। इसलिए ऋग्वेद का मंत्र कहता है जाये दस्तम, जाया ही घर है। और इसी को मनुस्मृति आदि में बोला, न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते, ये बिल्डिंग घर नहीं होता है, पत्नी घर होती है। पत्नी को अगर तुम्हें घर चाहिए तो पत्नी को संभालना सीखो, पत्नी को रेस्पेक्ट करना सीखो। और एक चीज बात करके आगे बढ़ेंगे लेडीज से रिलेटेड, क्योंकि हम हजार हजार सालों से ये माइंडसेट लेकर चले और पुरुषों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने फिजिकल पावर के कारण, मतलब शारीरिक बल के कारण, स्त्रियों को हमेशा सेकेंडरी रखा, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, कंसिक्वेंस, कि स्त्रियों के अंदर ये एक उनके डीएनए में ये भाव आ गया कि हम पुरुषों से इन्फीरियर है। फिजिकली इन्फीरियर की बात आती तो समझ में आती, स्त्रियों के अंदर ये भाव पैदा हो गया कि हम हर मामले में इनसे इन्फीरियर हैं, ज्ञान में, बल में, शक्ति में, बुद्धि में, समझ में, हर मामले में। और ये हमें सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होने लगा, स्त्रियां हर मामले में कंप्रोमाइज कर लेती है। भारत में सरकारें रूल बनाती है कि ये महिला इन सीट पर खड़ी होंगी, पॉलिटिक्स में सरपंच बनके, ब्लॉक हेड बनके या डिस्ट्रिक्ट हेड बनके शासन करता है पति। पत्नी को पूछते हैं, तुम तो सरपंच हो, तुम डिसीशन लो, मुझे क्या आता है, मैं तो औरत हूं। आप मत सोचिए कि ये कोई एक दो एग्जाम्पल है, दुनिया में सब जगह महिलाओं के अंदर वो एक जो संस्कार, आपको कर्म सिद्धांत में संस्कार पढ़ा है ना, कोई भी एक्सपीरियंस जब आप बार बार करते रहते हैं, धीरे धीरे वो आपका सबकॉन्शियस मेमोरी इतना स्ट्रांग हो जाता है, आप उसी तरह बिलीफ सिस्टम आपका बन जाता है। महिला समझने लग गई, मैं केवल फिजिकली कमजोर नहीं हूं अपने पति से, मैं तो मेंटली भी कमजोर हूं, मेरी स्मार्टनेस भी कम है, मेरा एजुकेशनली भी मैं कमजोर रहूंगी। पर ऐसा सा सच नहीं है ना। और जिस जिस सोसाइटी में महिलाओं ने आगे बढ़े, देखिए अब तो हम स्पेस में भी महिलाएं जाती हैं, डॉक्टर्स भी महिलाएं होती हैं, इंजीनियर्स भी महिलाएं होती हैं, आर्मी में भी महिलाएं होती हैं, पुलिस ऑफिसर, कितना दबंग पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो किरण बेदी जैसे भारत में हम देखते हैं अभी होते हैं, जिसको देख करके बड़े से मर्द क्रिमिनल्स, मेल क्रिमिनल्स भी घबराते हैं होते हैं। तो जिसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स दूर हो गया, जिसने अपने आप को पहचान लिया, फिर तो वो जगत जीत जाता है, जीत जाती है वो महिला। और जिस सोसाइटी में महिलाओं को ये माना गया कि तुम ज्यादा मजबूत हो पुरुष से, ऐसे बहुत सारे ट्राइब हैं जहां महिलाएं डोमिनेट करती हैं, पुरुष बाकी समाज के महिलाओं की तरह सेकेंडरी काम करते हैं, इसी सोच की बात है और कुछ नहीं, ये साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजिकली हमने ये बात जमा के बैठा दी कि तुम कमजोर हो, कुछ नहीं कर सकते हो। एक हाथी को, हाथी जवान हाथी था, और जवान हाथी में कितना पावर होता है आप कल्पना नहीं कर सकते, वो बड़े बड़े हेवी ट्रक्स को भी पलटा सकता है। और इंसान ने उसको, हाथी को पकड़ा और उसके पैरों में रस्सी बांध दी, बड़ी जंजीर बांध दिया, 2-3-4 साल तक उसके पैरों में जंजीर बंधा रहा। उसके बाद हाथी के पैरों में जंजीर नहीं बांधा जाता, हाथी को जहां खड़ा कर दो वो खड़ा रहता है, एक पैर नहीं हिलता। क्यों पता है? आपको लगेगा हाथी तो बड़ा बात मानने लग गया, समझदार हो गया, नहीं, हाथी बात मां नहीं मान रहा है, समझदार नहीं हो रहा है, संस्कार काम कर रहा है, जंजीरा बांधा नहीं जा रहा है। पर 2-4 साल 5 साल से जंजीर जो बांधा जाता था, वो जो एक्सपीरियंस है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है, अब हाथी के पैर में जंजीर ना भी बांधो वो खड़ा रहता है, क्योंकि वो फील करता है मेरे पैर में जंजीर बंधा है। यही संस्कार महिलाओं के साथ भी काम किया, तुम किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं, ये तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारे काम का नहीं, ये तुम्हारे काम का नहीं, ये तुम्हारे काम का नहीं, ये मर्दों का काम है, 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 हम मान के बैठ गए, महिलाएं मान के बैठ गए। अब उनको आप उठाओ तो 1,000 लोगों को इंस्टिगेट करो तो 1-2 महिलाएं उठ जाती हैं, 99, वो 1,000 में से 999 अभी भी दब जाती है, नहीं ये मैं नहीं हूं। पति मारता है, रिएक्ट क्यों नहीं करते हो? पति है, परमेश्वर है, मारना उसका हक है, कैसे मैं रिएक्ट करूं? जंजीर बंधा हुआ हाथी का जंजीर खोल दो, हाथी अभी भी फील करता है कि मैं जंजीर से बंधा हुआ हूं। इसी तरह आज भी महिलाएं जो अपने आप को कमजोर समझती हैं इसी कारण से। और जब तक जिस परिवार में महिला के अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको तो दुख भोगना ही भोगना है, पति तो उसके ऊपर राज करेगा ही करेगा, फिर आप रोते रहने से कुछ नहीं होगा। ये एजुकेशन एक जनरेशन से नहीं आता है, 2-4 साल से नहीं आता है, ये महिलाओं का ही काम है कि अपनी बच्चियों को ट्रेंड करे। आप लोग तो भाग्यशाली हैं, अमेरिका में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके अपने फैमिली में सब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो मैं तो जानता हूं, इवन इस हालत में भी, इवन अमेरिका जैसे देश में रहते हुए भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत सारे पुरुष यहां भी पत्नियों के ऊपर उसी तरह का सेकेंडरी सेकेंडरी सिटीजन की तरह व्यवहार करते हैं। पर बहुत सारे लोग भाग्यवान हैं जिनके फैमिली में ऐसा नहीं है, पर आपके मूल देश भारत में और इवन अमेरिका में भी जो हमारे पास जो होम क्या कहते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो रिपोर्ट्स आते हैं, इवन इंडियन फैमिली में, साउथ एशियन फैमिली में, यहां रह करके उनकी परसेंटेज कम नहीं है? 5, अब पढ़े सारे जो यहां हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये 5-10% नहीं, हजारों की संख्या में साल में आते हैं रिपोर्ट्स, और तो हजारों तो कभी रिपोर्टेड होते भी नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस अलग अलग लेवल पर। क्यों? कारण यही है, स्त्री के अंदर वो अवेयरनेस नहीं है कि वो भी पावरफुल है, फिजिकली नहीं बाकी किसी भी मामले में काम नहीं होना चाहिए। ये एजुकेशन की जरूरत है, हम अपने पढ़े लिखे लोग अपने बच्चे को ऑलरेडी कर देते हैं, पर सोसाइटी में भी इस जागरूकता की जरूरत है। तो कोई भी क्या है कि आप कहेंगे ये नारी वाली बातें क्यों ले आएगी, कि एट द एंड ऑफ द डे फैमिली तो पति और पत्नी से चलता है ना। शादी करने के बाद पत्नी की, वो महिला की पत्नी, फिर माँ, फिर अलग अलग रूपों में जो उसको जीना होता है वो तो पार्ट ऑफ फैमिली होता है ना। तो ये बात अगर नहीं आएगी, नहीं चिढ़ेगी, नहीं करेंगे तो फिर कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, बातें फिर खुलेगी कैसे, समझदारी बढ़ेगी कैसे? मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप में से बहुत लोग और दूसरों तक पहुंचाएंगे, इसी तरह तो ट्रांसमिशन होगा ना विचारों का आदान प्रदान। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना सीखें, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना सीखें। इसका अर्थ, ये जो मैंने नारियों के बारे में कुछ चीजें बताया, इसका अर्थ नहीं है कि सभी नारी निर्यातित हैं और सभी पुरुष जुल्म करते हैं तो पुरुष सारे खराब हैं, नारी सब अच्छी दूध की धुली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके साथ बीतता है उनके बारे में है, क्योंकि परिवार में हम ये भी देखते हैं, पत्नी हो पति हो, अगर हम एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट नहीं करते, अगर हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो फिर रिलेशनशिप लंबा नहीं चलता। अगर रिलेशनशिप चलती है तो घुट घुट के चलता है, या तो पति घुट रहा होता है या पत्नी घुट रही होती है, फिर सेपरेशन की नौबत आती है। आजकल के जमाने में सेपरेशन बाएं हाथ का खेल है। ये क्यों होता है वो हम अगले बार भी, आज टाइम हो गया है, अगले बार भी इसको थोड़ा और भी डिस्कशन करेंगे कि हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप की क्या बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं और क्या करने पर ये नहीं होगा, और उसके लिए क्या चाहिए, हल्की सी समझदारी, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है जो हमने किया वो ठीक था कि नहीं था। कोई बहुत सारे जगह लोग इंटेंशनली नहीं करते पर उनको लगता है यही ठीक है, उनको समझने की जरूरत है, बस कोई इंफॉर्मेशन उनको दे, कोई उनको बता दे, गाइड कर दे, ये सही रास्ता नहीं था व्यवहार का, ये सही रास्ता है। उनमें से एक है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना सीखो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा कुछ ना हो कि किसी को लगे कि आपने मुझे डिसरेस्पेक्ट किया पब्लिक में, तो दूसरों के सामने तो बिल्कुल नहीं। और हमारा व्यवहार इतना ग्रांट फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये रिलेशनशिप को, अच्छे रिलेशनशिप के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज है, हम एक दूसरे की डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करना सीखे। मैं हमेशा बोलता हूं, मतलब मैं बोलता हूं, मतलब ये कोई मेरी बातें नहीं है, मतलब ऋषि मुनि ज्ञानी शास्त्रों की बात कोट करता हूं, कि जब आप दो बर्तन घर में रखते हैं ना तो उसमें टकराव होता है, जहां डिसएग्रीमेंट होता है या डिबेट होता है, जिसको हम आम भाषा में लड़ाई कह देते हैं। लड़ाई का अर्थ ये नहीं है कि हम एक दूसरे पर हाथ पैर उठाते हैं, मारते हैं, जहां डिबेट होता है, आर्गुमेंट होता है, उसी को हम आम भाषा में कहते हैं पति पत्नी की लड़ाई, नोकझोंक। लड़ाई होना कोई बुरी बात नहीं है, मारपीट की नहीं कह रहा हूं, डिबेट की, आर्गुमेंट की। क्यों? क्योंकि दो ह्यूमन बीइंग है, दो अलग अलग तरह के सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, किसी भी टॉपिक पर दोनों की डिसएग्रीमेंट होना बहुत नेचुरल है और आर्गुमेंट होना हेल्दी है, आर्गुमेंट को अनहेल्दी नहीं समझना। हाँ, अगर आर्गुमेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब है समथिंग इज फिशी, कुछ बीमारी अंदर है, या तो एक पूरी तरह दब चुका है या दब चुकी है। माँ जो बोलो वही सही, तुम जो बोलो वही सही, या तो पत्नी 100% सरेंडर कर चुकी है या पति 100% सरेंडर कर चुका है कि भाई तुम जो बोलो वही सही। और ये कोई हेल्दी तो नहीं है, एक आदमी पुरुष हो या स्त्री दोनों में से कोई कंप्रोमाइज कर रहा है या कर रही है, इट्स नॉट ए हेल्दी थिंग। इसका मतलब रिलेशनशिप के अंदर पैचअप हो रहा है, इट्स नॉट ए नेचुरल रिलेशनशिप, इट्स नॉट ए हेल्दी रिलेशनशिप, इट्स ए रिलेशनशिप जो अंदर से तो ठीक लग रहा है, अंदर से पैचअप है, पैच डाल रखा है, जैसे ट्यूब में पैच डालते हैं और टायर के अंदर छुपा हुआ होता है। डिसएग्रीमेंट को एक्सेप्ट करें, नेचुरली लें, किसी बात पर जो मैं सोचता हूं हो सकता है वो ऐसा ना सोचती हो, जो वो सोचती है हो सकता है मैं ऐसा ना सोचता हूं, और ये वहां टू साइडेड होनी चाहिए, हर चीज टू साइडेड। आज के लिए बीच में यही रखेंगे, आगे फिर इसकी कंटिन्यूटी रखेंगे, बहुत सारी चीजें और है जो जानने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हो सकता है आप में से बहुतों को लगे हमें जानने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आपको जरूरत ना हो, पर थोड़ी बहुत आप इंफॉर्मेशन मिले आप अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों तक, आपके फ्रेंड्स के घर में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो बोलता है वो बड़ा ज्ञानी है, ऐसा भी कुछ नहीं, तो हमारा काम है बोलना तभी बोलते हैं, हमारे प्रॉब्लम सबके साथ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब दो लोग रहते हैं प्रॉब्लम्स होंगे, उससे निपटना यही है हमारा काम, उसको ठीक ठीक हैंडल करना, जितना बेटर हैंडल कर सकते हैं उतना रिलेशनशिप अच्छी होती है। रिलेशनशिप अच्छी होना क्यों जरूरी है? खुश रहने के लिए, और कुछ नहीं जी, और कुछ नहीं, सिर्फ खुश रहने के लिए, दोनों खुश रहे यही है उद्देश्य। अगर दोनों में से एक खुश नहीं हो पा रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। किसी को मजबूर मत करिए कंप्रोमाइज करने के लिए, खुश रहने के लिए कोशिश करिए, और ये तब होगा जब एक दूसरे को हम समझते हैं। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।